आरवी, सच में कोई गंभीर बात नहीं है ना? आपके और दामान जी के बीच सब ठीक है ना? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अब भी उनके मन में शंका थी। आरवी ने गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बस मेरा मन किया कुछ दिन अपनी माँ के साथ बिताने का, तो आ गई यहाँ आपके पास। अगर आपको मैं बोझ लग रही हूँ तो बोल दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी। आरवी ने झूठी नाराजगी जताते हुए मुंह फुलाया और जैसे ही उठने लगी, अनुपमा जी ने उसको वापस बिठाते हुए कहा, बहुत शैतान हो गई हैं आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती। आपके आने पर तो हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा, पर फिर भी अभी अभी आपकी सास वापस आई हैं। हमारे ख्याल से आपको अपने घर पर होना चाहिए था। तो क्या ये मेरा घर नहीं? ये भी आपका ही घर है बेटा। पर वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही आरवी ने उनकी बात काटते हुए कहा, कोई परवर नहीं माँ, आपको पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतने दिनों से हॉस्पिटल का फीका खाना खा रही हूँ, अब मुझे अपनी माँ के हाथ का टेस्टी खाना खाना है। जोरों की भूख भी लगी है मुझे, जल्दी से कुछ लाकर दे दीजिए। आरवी ने बड़ी ही चालाकी से बात का रुख बदल दिया। अनुपमा जी उसकी बात सुनकर तुरंत उठते हुए बोली, आप यहीं बैठिए, हम अभी आपके लिए कुछ पौष्टिक बनाकर लाते हैं। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। आरवी ने गहरी सांस छोड़ी और सोफे से सर टिकाकर आंखें बंद करके लेट गई। आरवी ने उन्हें शान की बातों में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो उनके सामने उसकी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। उन्हें अपना घर छोड़ने के बारे में भी नहीं बता सकी, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पर अब कब तक उनसे झूठ कहकर यहाँ रहेंगी, यही सोच रही थी वो। कुछ देर में अनुपमा जी उसके लिए खिचड़ी बनाकर ले आई और अपने हाथों से उसको खिलाया। उनका प्यार पाकर आरवी की उदासी कुछ पल के लिए दूर हो गई। खाने के बाद उसने अपनी दवाई खाई, फिर अनुपमा जी उसको कमरे में लेकर चली गई। अभी सीढ़ियां चढ़ने में उसको दिक्कत होती, इसलिए नीचे अपने रूम में लेकर चली गई। आरवी उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। अनुपमा जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। दवाई और मानसिक तनाव की वजह से वो जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई, जबकि अनुपमा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए आरवी के बारे में सोचने लगी। आज का उसका व्यवहार कुछ संदिग्ध था, इसलिए अनुपमा जी के मन में शक पैदा हो चुका था। दूसरे तरफ सारे रास्ते अर्पिता जी अपनी ही सोच में गुम थी और शान ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कार मल्होत्रा निवास के पोच में जाकर रुकी तो गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनकर सब जो बड़ी ही बेसब्री से आरवी के आने की घड़ियां गिन रहे थे, वो गेट के बढ़ गए। शान कार से बाहर निकला ही था कि अंशु अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए वहां पहुंच गई और सितारों से चमकती आंखों से उसको देखते हुए बोली, डैडा, मम्मा आ गई। अर्पिता जी भी कार से बाहर निकल चुकी थीं। जब उनके कानों में अंशु का सवाल पड़ा तो माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बड़ों को तो जैसे तैसे समझा देंगे और शायद वो समझ भी जाए, पर अंशु तो छोटी है और अपनी मम्मा में उसकी जान बसती है। अगर कुछ पल उसे आरवी ना दिखे तो व्याकुल हो उठती है। अब वो कैसे रह सकेगी आरवी के बिना, यही सोचकर वो और ज्यादा परेशान हो गई। जबकि शान अंशु के पास चला आया और उसको अपनी गोद में उठाकर मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेटा, मम्मा को उनकी मम्मा की याद आ रही थी तो वो आपकी नानी के पास गई हैं और डैडा आपको भी उनके पास लेकर जाने वाले हैं, तो जाइए और छाया दीदी से कहिए कि आपके और अपने कपड़े पैक कर लें। नन्ही अंशु तो ज्यादा कुछ समझ नहीं सकी, पर सामने गेट पर खड़े लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो हैरान हो गए। सुयश जी ने चौंकते हुए सवाल किया, शान, इन बातों का क्या मतलब है? अगर आरवी बहू को अपने मायके जाना था तो पहले यहाँ आ जाती फिर चली जाती, और अगर वो अपनी माँ से मिलने गई है तो आजकल में लौट आएंगी, फिर अंशु और छाया को वहाँ भेजकर उनकी परेशानी बढ़ाने की क्या जरूरत है? शान ने शांति से उनकी बात सुनी और सबकी आंखों में ढेरों सवाल भी देखे जिनके जवाब अब उसे देने थे, पर अंशु के सामने वो उन बातों को कहना नहीं चाहता था, इसलिए अंशु को गोद में उठाकर छाया की तरफ बढ़ गया और अंशु को उसको देते हुए बोला, जाकर अपना और अंशु का सामान पैक करो, ध्यान रहे कि लंबे वक्त तक रुकना पड़ सकता है तो उस हिसाब से ही पैकिंग करना, और उसके बाद आरवी की जरूरत की चीजें भी पैक कर देना। लंच से पहले छोड़ने जाऊंगा तो उससे पहले पैकिंग खत्म कर लो। शान के गंभीर भाव देखकर छाया समझ गई कि कुछ बड़ी बात है, फिर उसकी बातें जिस और अंदेशा कर रही थी उसे भी वो कुछ कुछ समझ रही थी, इसलिए उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और अंशु को लेकर हामी भरते हुए वहां से चली गई। अब शान ने बाकी सबको एक नजर देखा और अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, अंदर आइए, सब कुछ जरूरी बात करनी है। सबके जहन में बहुत से सवाल घूम रहे थे तो सभी अंदर आ गए। अर्पिता जी भी अंदर चली आईं। अब सुभाष जी ने शान को चिंतित निगाहों से देखते हुए सवाल किया, शान, क्या है ये सब? आरवी यहाँ क्यों नहीं आई और छाया और अंशु को लंबे समय तक वहाँ क्यों रहना होगा? क्योंकि ये आरवी का फैसला है। शान ने जैसे ही ये कहा, सुयश जी ने हैरानगी से सवाल किया, कैसा फैसला? जो कहना है साफ साफ कहिए। शान ने गहरी सांस छोड़ी और बिना किसी भाव के बोला, आरवी मुझसे जुड़ा रिश्ता तोड़कर इस घर से और मेरी जिंदगी से जा चुकी है। वो वापस यहाँ नहीं आना चाहती। ये उसका फैसला है कि वो अपनी माँ के पास रहेगी, मुझसे दूर,
और मैंने उसके फैसले को मान लिया है। उसकी खुशी मुझसे दूर रहने में है और वो वापस यहाँ नहीं आना चाहती, इसलिए अब आप में से कोई भी उसको वापस आने के लिए नहीं कहेगा। अंशु उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो भी उसके साथ रहेगी। और अभी आरवी की हालत ठीक नहीं, इसलिए उसका और अंशु का ध्यान रखने के लिए छाया भी वहीं रहेगी उनके साथ। शान ने जैसे अपना फैसला सुना दिया था, सब शॉक्ड से उसे देखते ही रह गए, जबकि शान अपनी बात कहने के बाद बिना एक पल गंवाए सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। उसकी बातों का मतलब सभी समझ गए थे और आरवी के फैसले की वजह भी वो सब बखूबी समझ रहे थे, जिससे शान के लिए उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुयश जी गुस्से में उसे कुछ कहने ही जा रहे थे कि अर्पिता जी ने उनकी बाह पकड़ ली। सुयश जी ने गुस्से भरी निगाहें उनके तरफ घुमाई। अर्पिता जी ने इनकार में सर हिलाते हुए बेबसी से कहा, वो खुद बहुत तकलीफ में है, मानते हैं उनकी गलतियों की वजह से आरवी ने ये फैसला लिया है, पर उन पर गुस्सा करके अब कुछ ठीक नहीं होगा। हमें आरवी के फैसले का सम्मान करना होगा और उन्हें वक्त देना होगा, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। और हम आपसे विनती करते हैं, आप शान को इस मामले में कुछ मत कहिएगा, इस बार विश्वास कर लीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। सुयश जी ने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और चीखते हुए बोला, अब कुछ ठीक नहीं होगा, आपके लाडले ने अपने हाथों अपनी बसी बसाई गृहस्थी को आग लगा दी है। इतना समझाया था हमने कि अपने और आरवी के रिश्ते को इस दुश्मनी के बलि मत चढ़ाइए, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उस बच्ची को हम क्या कहें जब अपना ही सिक्का खोटा है, उन्होंने तो बहुत बर्दाश्त कर लिया, अगर उनके जगह कोई और होता तो इतने वक्त तक भी नहीं रुकती, और आखिर में वही हुआ जिसका हमें डर था। शान के व्यवहार की वजह से आखिर आरवी बहू घर छोड़कर और उनसे रिश्ता तोड़कर चली गई। वो गुस्से में अपनी बात कहकर वहां से चले गए। अर्पिता जी बस उन्हें देखती ही रह गईं। सुभाष जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। सावित्री जी ने उन्हें देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं।
वैसे तो उन्हें यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो चुका था, पर अब तक उनका और शान का आमना सामना नहीं हुआ था। शान जानबूझकर उनसे बात करने से बच रहा था, क्योंकि अपनी सोच पर शर्मिंदा था वो, और हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी सावित्री जी से नजरें मिलाने की, उनका सामना करने की। सावित्री जी तो चाहती थी उससे मिलना, बात करना, पर उसका व्यवहार देखकर वो भी पहल नहीं कर सकी। आज वो शान के आने के बाद से गहराई से उसके हाव भाव देख रही थी, और आखिर उन्होंने फैसला किया शान से बात करने का। शान अपने रूम में बेचैनी से टहल रहा था, तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ तो वो चलते चलते रुक गया। उसने गेट की तरफ पलटते हुए कहा, दरवाजा खुला है छाया, अंदर आ जाओ। शान को ऐसा लगा कि छाया आई होगी आरवी का सामान पैक करने, पर अगले ही पल उसका ये भ्रम दूर हो गया जब उसके कानों में सावित्री जी की आवाज पड़ी, हम हैं शान। इसके साथ ही दरवाजा खुल गया, सामने सावित्री जी खड़ी थी। उनको अचानक यहाँ देखकर शान समझ नहीं सका कि क्या कहे। उसके मुंह से हैरानगी से निकला, माँ, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। ये देखकर सावित्री जी के लबों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। तो अब आपको हमें माँ कहने में भी हिचकिचाहट हो रही है? ऐसा नहीं है माँ, वो मैं, शान ने तुरंत सफाई दी, पर उनसे निगाहें चुराता रहा। ये देखकर सावित्री जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, शान, आप नजरें नहीं मिला पा रहे हमसे, क्या इसकी वजह जान सकते हैं हम? ऐसे क्या गलती की है हमारे बेटे ने कि अपनी माँ से बात करने से वो कतरा रहे हैं? इतने दिनों से हमसे बचते फिर रहे हैं और अब हमसे नजरें चुरा रहे हैं? उनके सवाल सुनकर शान उनके कदमों में जाकर बैठ गया और उनकी हथेली को अपने माथे से लगाते हुए शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मैंने न जाने क्या क्या कहा आपको, अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठाई मैंने, मैं इतने सालों तक आपको गलत मानकर आपसे नफरत करता रहा। आई एम सॉरी माँ, मैंने जो किया उसके बाद मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ, आपसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं, मुझ में हिम्मत नहीं थी आपको फेस करने की, इसलिए आपका सामना करने से बच रहा था। आई एम सॉरी माँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। शान की आँखें भीग गईं और गला रुंध गया। सावित्री जी की भी आंखें नम हो गईं। उन्होंने शान के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हम तो आपसे नाराज ही नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने उसी पर विश्वास किया जो आपको दिखाया और सुनाया गया, आप तो बच्चे थे तो आपने वही समझा जो आपको समझाया गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं बेटा, इसलिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दीजिए और हमसे दूर भागना बंद कर दीजिए। सालों बाद अपने बेटे को देखा है हमने और अपने कलीजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाने के लिए एक हफ्ते से तड़प रहे हैं, हमें हमारा बेटा, हमारा शान लौटा दीजिए, हमारे बरसों से तड़पते दिल को थोड़ा सुकून पहुँचाने दीजिए हमें। टू बी कंटिन्यूड।